हरे कृष्णा, एकादशी की महिमा। वैसे तो हम सब एकादशी व्रत के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु फिर भी ये बहुत आवश्यक है कि हम हर एकादशी के दिन एकादशी महारानी की महिमा का बखान करें। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वर्ष में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास आता है तो 26 एकादशी होती है। हर महीने में एक एकादशी शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में होती है। एकादशी के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे हमारे धर्म में बहुत सारे उपवास हैं, इनको जब हम रखते हैं तो हमें बहुत बहुत पुण्य तो मिलता है, परंतु यदि हम नहीं रखते हैं तो अपराध नहीं लगता। परंतु एकादशी एक ऐसा उपवास है, इसको रखने से पुण्य तो बहुत 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 मिलता है, परंतु यदि नहीं रखते तो नरक के समस्त प्राणियों के अपराध हमें भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। नरक के समस्त जो पापी लोग होते हैं उनके समस्त पाप उस दिन अन्न के अंदर, अनाज के अंदर वास करते हैं, और जो भी अन्न को खाता है नरक के प्राणियों के समस्त पाप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये कोई धारणा नहीं है, मानसिक चेतना का कोई, ये मेंटल स्पेकुलेशंस नहीं है, ये शास्त्र की बात है कि हमें एकादशी के दिन किसी भी सूरत में अनाज नहीं खाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि एकादशी कब रखनी चाहिए। हर महीने में 11वीं तिथि को एकादशी आती है। एकादशी का मतलब होता है एक मानी 1 और दसी मतलब 10, यानी 11वीं तिथि जो होती है उसी दिन एकादशी होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर एकादशी 10वीं तिथि के साथ हो तो उस दिन उपवास ना करें, बल्कि 11वीं तिथि के साथ मिली हो तो उसी दिन एकादशी रखनी चाहिए। परंतु क्योंकि हम ये सब बातें समझ नहीं आती हैं, इसलिए जब भी दो एकादशी हो ना तो हमें सेकेंड वाली एकादशी रखनी चाहिए। अब यहाँ यह प्रश्न है कि एकादशी रखने से क्या फल प्राप्त होता है। नहीं रखते हैं तो नरक में जाना पड़ता है, और रखते हैं तो क्या होता है। एकादशी रखने के दो फल प्राप्त होते हैं, एक है लौकिक और दूसरा है अलौकिक। पद्म पुराण में एकादशी उपवास के विषय में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। हर एक एकादशी का एक अलग लौकिक फल है। जैसे पुत्रदाय एकादशी से पुत्र प्राप्त होता है, किसी एकादशी से धन प्राप्त होता है, किसी से सुंदर स्त्री, किसी से निरोग जीवन, किसी से हमारी काया जो है वो सुंदर हो जाती है, परिवार में शांति हो जाती है। समस्त एकादशी रखने से ये बात तो आती ही है कि हमारे समस्त अपराध दूर होते हैं। ये सब तो लौकिक फल है। इसके अतिरिक्त एकादशी का जो वास्तविक महत्व है हम वैष्णवों के लिए, वो ये है कि एकादशी का दिन भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब जो लौकिक फल है, जैसे पुत्र मिलना, धन मिलना, आरोग्य शरीर मिलना, परिवार में शांति प्राप्त होना, वो तो है ही, वो तो मिलेंगे ही ना, किधर जाएंगे। परंतु हम वैष्णवों को एक बात सदैव मन में रखनी होती है कि हम जो एकादशी का उपवास रख रहे हैं वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। आप जानते हैं व्रत का क्या मतलब है? उसका उत्तर ये है कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं एकादशी व्रत का अर्थ है ये खाना है ये नहीं खाना है, ये खाना है ये नहीं खाना। ना ना, एकादशी इसलिए नहीं आती कि सुबह से लेकर रात तक मन में बस यही चलता रहे कि ये खाना है ये नहीं खाना है। उपवास, उपवास का मतलब क्या होता है? उप कहते हैं नजदीक और वास कहते हैं रहना, यानी उपवास का मतलब है आज का सारा दिन हम भगवान के साथ गुजारेंगे। जहां तक खाने का संबंध है तो वो तो दशमी की रात से ही छोड़ देना चाहिए। दशमी की रात में संध्या तक भोजन कर लेना चाहिए, फिर एकादशी के दिन निर्जल रहना चाहिए और द्वादशी के दिन सुबह मंगल आरती के बाद जो पारायण का समय है उस दिन अनाज खाना चाहिए। लेकिन यदि आज का कोई कलयुगी जीव इस प्रकार की एकादशी की विधि सुनेगा ना, तो कभी एकादशी नहीं रखेगा, क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, इतनी तपस्या नहीं कर सकते ना। तो इसलिए एकादशी में बहुत छूट दी गई है। जैसे यदि आप निर्जल नहीं रह सकते तो ठीक है, आप जल पी सकते हैं, परंतु जल पीकर भी आप नहीं रह सकते, भजन नहीं होता, तो अब ध्यान क्या रखना है कि वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना। अगर ये हो ही नहीं रहा है, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं या फिर खाली जल पी रहे हैं, तो फिर पूरा ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो फिर फायदा ही नहीं है ना भूखा रहने का। भूखे तो भिखारी भी रह लेते हैं, तो क्या उनका एकादशी उपवास होता है? अगर हम भूखे रहने को एकादशी समझ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि उससे सिर्फ आपको 10% पॉइंट मिलते हैं। किसी भी एग्जाम में 10% पॉइंट मिलने से आप कभी भी पास नहीं होते। 90% एकादशी में जो मार्क्स मिलते हैं वो आपकी भक्ति से मिलते हैं, आपकी तपस्या से मिलते हैं। तो अगर वो हो ही नहीं रही है तो फिर क्या फायदा? इसलिए एकादशी में छूट दी गई है कि चलो ठीक है, आप जल पीकर नहीं रह सकते तो कुछ फल ले लो। मतलब ये सब छूट इसलिए दी जा रही है कि आप अच्छी तरह से नाम जप कर सको, भगवान की कथाओं को श्रवण कर सको, भूख से बेचैनी ना हो, कुछ फ्रूट, कुछ जूस, कुछ दूध, कुछ लस्सी, अगर कुछ इस तरह का आप ले रहे तो थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। परंतु आज हम लोगों ने क्या कर रखा है जानते हैं? कि एकादशी का दिन केवल केवल और केवल खाने के लिए ही समझते हैं कि ये दिन आया ही खाने के लिए है। एकादशी के दिन पूरा का पूरा जोर खाने पर दिया जाता है। एकादशी आते ही इस दिन आम दिन से भी ज्यादा खाते हैं। ये आटा लेकर आना है, वो आटा लेकर आना है, सावणी लेकर आनी है, साबुदाने लेकर आने, शक्करकंदी, ये मसाला, वो मसाला, ये नमक, वो नमक, पूरा का पूरा ध्यान खाने पर ही केंद्रित कर देते हैं। जबकि खाने पर केंद्रित नहीं होना है, क्योंकि हम चाहे कुछ भी खाते हैं ना, वो या तो सत्वगुणी होता है, या तमोगुणी होता है, या रजोगुणी होता है, जो कि हमारे भजन में बाधा बनता है। तो जो हमने पहले पढ़ा कि दशमी के दिन ही संध्या तक हमें खाना बस बंद कर देना चाहिए, वो इसलिए कि क्योंकि वो खाना पूरा अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा और सुबह उसका त्याग हो जाएगा, फिर पेट के अंदर भी कोई अनाज नहीं रहेगा। और एकादशी के दिन बस थोड़ा सा, हल्का सा, इतना खाना चाहिए ताकि शरीर चल सके और भक्ति हो सके। एक एप्पल ले लिया, बहुत देर के बाद भजन कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर एक जूस का ग्लास ले लिया, या फिर एक लस्सी का ग्लास पी लिया, या पानी का ग्लास पी लिया, बस ऐसा कि आप नॉर्मली भजन कर सको। आप इतना बेहोश नहीं हो जाओ भूख से कि आप भजन ना कर सको, आप भक्ति ना कर सको। एकादशी रखने से हरि प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन बना ही उनको प्रसन्न करने के लिए है। याद रखिए भक्तों, हमारे जीवन का एक ही मकसद है, भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान ने हमारी सुविधा के लिए एक दिन मुकरर कर दिया है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुगी जीव है, सदैव कहता रहेगा, हे भगवान हम ग्रस्ती हैं, हम जीवन भर और 24 घंटे दुकान पर काम करते हैं, घर पर काम करते हैं, स्कूल में स्टडी करते हैं, यहाँ भागते हैं, वहां भागते हैं। ये इतने आर्ग्यूमेंट्स देगा कि फिर भगवान के पास भी शब्द नहीं बचेंगे, क्या बोलूं अभी इसको। जिंदगी इसने अपनी इतनी कठिन कर ली है, इतनी मसरूफ हो गए हैं अपनी जिंदगी में इन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में, कि आज किसी के पास समय ही नहीं है कि वो भगवान की भक्ति कर सके। उसी प्रकार जैसे हम हफ्ते में एक दिन अपनी दुकान बंद रखते हैं, बंद रखते हैं कि नहीं, जैसे संडे को ऑफिस और स्कूल भी ऑफ होता है, उसी प्रकार ये एकादशी का दिन इसलिए बनाया गया है, भगवान ने इसीलिए बनाया है कि इस दिन हम अपने सब भौतिक कार्यों को बंद रखें। आज का दिन कृष्ण के नाम, आज का दिन अपने गोपीनाथ के नाम, और उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करनी है। और भक्ति का आरंभ होता है प्रभात साधना से, मतलब सूर्य उदय से पहले जागना चाहिए और अपना नाम जप प्रारंभ कर देना चाहिए। इस कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति भगवान के नाम का जप और भगवान की कथाओं का श्रवण है, और आम दिन से अधिक करना है। मतलब जैसे रोज का नियम है 16 माला जप करना, तो इस महान दिन में भी यदि केवल 16 माला ही जप की तो क्या लाभ उठाए इस पवित्र दिन का। एकादशी के दिन कम से कम 25 माला करनी चाहिए, इससे अधिक भी कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, 48 कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं, परंतु जितना अधिक संभव है उतना अधिक नाम जप करना चाहिए। लेकिन यदि कोई जप नहीं करता, एक ही करता है या दो करता है या नहीं करता, तो भी उसे एकादशी के दिन अवश्य जप करना चाहिए। जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा जप करना चाहिए। एकादशी का दिन भक्ति के लिए होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है रात्रि जागना। वास्तव में उपवास का मतलब है तपस्या, कि हम भगवान के लिए क्या त्याग रहे हैं, क्या खाना त्याग रहे हैं, क्या भौतिक एंटरटेनमेंट त्याग रहे हैं, क्या अपनी नींद का त्याग कर रहे हैं। तो रात्रि जागकर तपस्या करना भी एकादशी का एक मुख्य अंग है। विधि तो ये है कि पूरी रात जागो और संकीर्तन करो, लेकिन फिर वही बात कि हम जैसे कलयुगी जीव अगर इतना स्ट्रिक्ट एकादशी के विषय में सुनेंगे तो फिर एकादशी का पालन कभी नहीं करेंगे और अपराधों का भागी बनना पड़ेगा। जिस प्रकार हम निर्जल नहीं रह सकते उसी प्रकार पूरी रात जाग भी नहीं सकते। तो इसमें भी छूट दी गई है कि जैसे यदि अगर हम 11 बजे सोते हैं तो 2 घंटे अपने भजन के लिए एक्स्ट्रा निकालेंगे और 1 बजे सोएंगे, 1 बजे सोते हैं तो 3 बजे, मतलब थोड़ा बहुत निश्चित रूप से जागना है, अपनी नींद का त्याग करना है। और जागना क्यों है? टीवी देखने के लिए नहीं। आजकल ऐसा होता है, न्यू जनरेशन को पता होता है हाँ जागना है, चलो ठीक है पार्टी करेंगे। जागना है संकीर्तन करने के लिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए। कलाओ तत् हरि कीर्तनात्, इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक ही साधन है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। एकादशी का एक मुख्य अंग है रात्रि में जागकर भगवान की भक्ति करना। अब मतलब इन समस्त चीजों को ध्यान रखना है एकादशी में, कि एक तो भोजन का त्याग, भोजन में कुछ भी नहीं खाएं, नहीं रह सकते जल पिए, नहीं रह सकते दूध पिए, नहीं रह सकते फल खाएं, लेकिन कुछ भी हो जाए इस दिन अनाज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कोई पूछे कि कभी गलती से ऐसा हो कि हमने अनाज खा लिया हो या स्टार्ट कर लिया हो, सुबह को नाश्ता खा लिया, तो क्या उस दिन हमारी एकादशी वैसे भी टूट गई है तो फिर आगे हम खा सकते हैं? नहीं नहीं, अगर गलती से खा लिया है तो भी आगे का दिन सावधान रहना है कि अनाज का सेवन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जैसे आपके हाथों यदि किसी एक व्यक्ति का खून हो गया तो आप तो अभी मर्डरर तो बनी गए, तो क्या सारों का गला काटते हुए फिरोगे? जैसे आप यदि अपने धन को संभालते हो, काउंट करते हो, किसी को देते हो ना, किसी ने आपको अगर किसी को 10,000 रुपए देने हैं तो काउंट करके देते हो, आपके पास 50,000 है, उसमें से देख रहे हो कि 10,000 देने हैं लेकिन इत्तफाक से 11 चले गए, तो आप क्या करोगे? बाकी के जितने बच्चे हैं वो भी उसको दे दोगे, चलो ठीक है वैसे भी 11 तुम्हारे पास चले गए, ये भी रख लो? नहीं, बाकी को तो संभालोगे ना। उसी तरह से यदि एक अपराध हो जाता है अनजाने में, कभी अनाज खा लिया जाता है, ये बहुत बड़ा अपराध है, उसके लिए हमें भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम गलतियों के पुत्ते हैं तो गलती हो जाती है, लेकिन जानबूझकर गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब पता हो कि आज एकादशी है उस दिन कभी भी अनाज नहीं खाना चाहिए, और अगर खा भी लिया हो अब तक किसी ने तो फिर अब एकादशी के दिन कभी भी अनाज नहीं खाए। और सबसे मुख्य अनाज नहीं खाना है, लेकिन उससे मुख्य बात क्या है? भगवान के नाम का जप करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना। जो नवदा भक्ति है उसमें से कोई भी अंग आपको अच्छा लगता है, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, अध्ययन करना, भगवान की विग्रह सेवा करना, जो भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को वस्त्र श्रृंगार करना इत्यादि, जो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें मन लगता है, वो सारे भक्ति के कार्य करने चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान के लिए तपस्या करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि बहुत सारे भक्त जिस पर ध्यान नहीं देते, वो है कि दूसरे दिन समय पर प्रयाण करना, यानी कि एकादशी के दिन जो उपवास खोलने का समय होता है ना, वो भी निश्चित होता है। तो हमें उसी पर्टिकुलर समय को ध्यान में रखते हुए अनाज खाना चाहिए, अन्यथा हमारी एकादशी जो है उसमें विघ्न पड़ता है। अवश्य उसी टाइम पर हमें एकादशी खोलने का प्रयास करना चाहिए, पहले ही देख लेना चाहिए कि कितने बजे खाना है। अगर हम इस प्रकार से एकादशी का उपवास रखेंगे तो अवश्य उसका वास्तविक फल प्राप्त होगा। वास्तविक फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम जन्म मरण के चक्कर से, इस संसर्ग से बचकर भगवान की शरण, भगवान के धाम को प्राप्त करें। और ये एकादशी का व्रत इतना महान है कि वो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकता है और बहुत इजी भी है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ छोड़कर, आप सबके चरणों को हाथ रखकर आपको ये निवेदन करती हूँ कि कृपया एकादशी का उपवास अवश्य रखिए। इससे हमारा जीवन अवश्य सफल होगा। जो भौतिक लाभ है, सुख संपत्ति, कर पुत्र इत्यादि, वो तो मिलेंगे ही, लेकिन अंत में भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।